पूर्व प्रसंग में तृणावर्त के वध को जो है वो प्रसंग चल रहे है, वामें कुछ भाग पे सुबोधिनी जी की पंक्ति इनको कल लापन भयो। आज भी वहीं से आगे चलनो है, जहाँ जहाँ कहीं हमको कहनी होंगी पंक्तियाँ उनको कहते भय आगे अपन चलेंगे। कल या स्थल पे कुछ पंक्तियाँ ये कारिकान की रह गई हैं, उनको भी जो है वो
थोड़ा सा यहाँ ठिकाने कह देना चाहिए। पूतना वधम आरभ्य कंसो जाना थी, हाँ पहले तो एक अष्टादश विद्यास्वपि ये पंक्ति और अधिक कहनी आवश्यक है। अष्टादश विद्यास्वपि भगवतो देहो नास्ति इति ज्ञापयितुम् एकदैव गुरुत्वं लघुत्वञ्च उच्यते, या पंक्ति को अवश्य कुछ कह देनी चाहिए, नहीं तो या ठिकाने कोई अनर्थ निकाल सके। अतएव जहाँ भी कोई को भी अनर्थ निकालने को स्वल्प भी अवकाश हो वहाँ ठिकाने तो पूर्ण विवरण पूर्वक कहना चाहिए, ये हमारा आग्रह रहे। अतएव ये स्थल भी एक ऐसा है कि या ठिकाने से कोई अनर्थ निकालने वालों निकाल सके।
अतएव या को भी जो है वो कुछ थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक। जैसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीला, यहाँ सीता में एक पंक्ति आवे है और वो पंक्ति अपन को ये बता रहे हैं कि अशरीरस्य विष्णोः पुरुष शरीर स्वीकार सर्गः। अशरीरस्य विष्णोः पुरुष शरीर स्वीकार सर्गः, माने विष्णु जो है वो अशरीर है, वह अशरीर विष्णु को पुरुष शरीर स्वीकार जो है वो सर्ग है। वहाँ जैसो अनर्थ निकल सके है ऐसो ही या स्थल पर भी निकल सके। अष्टादश विद्यास्वपि भगवतः देहो नास्ति, महाप्रभु जी क्या कहें कि अठारह विद्यान में या मैं सभी आ गए हूँ, अष्टादश विद्या में सभी चीज आ जाए तो अष्टादश विद्यास्वपि भगवतः देहो नास्ति, माने अठारह विद्यान के भीतर भगवान को देह नहीं कहो। अतएव देह नहीं कहो यो जो कही तो कोई अनर्थ निकालने वालों हो, क्योंकि दुनिया में अनर्थ निकालने वाले इनकी कमी नहीं है। अनर्थ निकालने वाले इनकी दुनिया में कोई कमी हो ये बात नहीं है। अनर्थ निकालने वाले जो हैं वो बहुत विपुल मात्रा में आजकल मिले हैं, कोई जो है वो कम मात्रा में मिलते हो ये बात नहीं। अर्थ कहने वाले कम मात्रा में मिलेंगे, अनर्थ कहने वाले बहुत विपुल मात्रा में चाहिए, इतने ढेर के ढेर। बाकी लिए जो है वो यूँ समझो कि वाह बाजार में तेजी आवे ही नहीं है, इतनो माल को स्टॉक पड़े रहे कि मंदी ही रहे तेजी आवे ही नहीं, इतनो माल को स्टॉक है अनर्थ कहने वाले। वाह अनर्थ सु बच के और सदर्थ को श्रवण करने को लाभ मिल जाए, माने समझ लो कि कोई भगवान की दया। अतएव अनर्थ को जहां जहां अवकाश हो वहां दबानो चाहिए। आज ही अनर्थ कहने वाले नए पैदा हो यो भी नहीं है, अनर्थ कहने वाले पहले सु जो है वो पैदा होते ही चले आए हैं। और जा दिन सु बुद्धावतार भयो है, महाप्रभु जी स्वयं कहें कि बुद्धावतारे तू अधुना हरऊ तद वशगा सुरा नाना मतानि विप्रेशु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्। वो भी ब्राह्मणन में पैदा होके अनर्थ कहने के लिए सब तैयार हो, क्योंकि बुद्धावतारे तो अधुना जा बखत बुद्ध को अवतार भयो है, वा बखत बुद्धावतारे तो अधुना हरऊ। अब मालिक एक काम करने के लिए आवे तो नौकरन को आना ही पड़े, बाबा ये निश्चित नियम। मालिक एक काम करने के लिए जब उतर तो हो तो वह बखत नौकरन को भी वो काम करना ही पड़े। बुद्धा अवतारे तू अधुना हरऊ, माने श्री हरि ने जा बखत अब बुद्धावतार धारण कियो तो भगवान के अंडर में जो रहने वाले जो सुराहा माने जो जितने देवता हैं उनने भी कियो कह रहे अपनो मालिक ही अब ये काम कर रहे हो तो अपन को भी करना चलो। तो नाना मतानी माने विप्रेशु भूत्वा ब्राह्मणन में पैदा होके नाना मत पैदा कर करके मोहनं कुर्वन्ती अंततो गत्वा मोह को फैला रहे हैं। यथा कथंचित कृष्णस्य भजनं वारयन्ती, यथा कथंचित कृष्ण भजन को निवारण करने को प्रयास करें। ऊपर से बड़े बड़े कृष्ण चिल्लाएंगे, कहें हमको ब्रह्म रुचे नहीं है, हमको कृष्ण रुचे है, यो सब कहेंगे। कोई एकाद व्यक्ति की मैं बात नहीं कहूँ जो अपनी अभी बात भई वाके लिए, परंतु जो है वो बात क्या कि यो बड़े चिल्लाएंगे कि हमको कृष्ण को ही नाम मजा आवे है, हमको जो है वो हमको ब्रह्म ब्रह्म से मजा नहीं है, और जो ब्रज में सुख है वो ये सब बातें करेंगे, किंतु नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम यथा कथंचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति। कोई रीत सु भी कृष्ण भजन निवारण करने को प्रयास करेंगे। लक्ष्य में आई कि नहीं? ऊपर सु कृष्ण कृष्ण चिल्लाते जाएंगे, हे कृष्ण करेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु भीतर सु उनको हृदय वही होएगो कि ये तो साकार ब्रह्म है, आरोपित ब्रह्म है, सगुण है, मिथ्या है, या मैं जो है वो कुछ तथ्य नहीं है, ये तो एक स्थूल अरुंधति है, शाखा है चंद्र को देखने की, या जात को जो है वो उनको ब्रेन बराबर काम करतो रहेगो, और जो है वो अंततो गत्वा मानेंगे यही बात को के जो है वो परम सत्य परमार्थ सत्य जो हो तो वो निर्गुण निराकार ही है, कि जाकू जो है वो हम लोग शशश्रृंग माने हैं, वह शशश्रृंग को वे लोग जो है वो निर्गुण निराकार परम सत्य मानेंगे, जो कोई प्रमाण सु सिद्ध वस्तु नहीं है। मैं तुमको यही के लिए पहले अक्षर ब्रह्म को कुछ प्रकार बता चुके हूँ कि अपने यहाँ को अक्षर भी वाढंग को निराकार नहीं है, ये सब मैं तुमको दो तीन दिन पहले बहुत कुछ अक्षर ब्रह्म को स्वरूप में मैं कह चुके हूँ। अतएव यथा कथंचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति। जब एक आदमी को बैठ जाए कि परम सत्य परमार्थ तो निर्गुण निराकार है, ये तो व्यावहारिक सत्य है, उपासनार्थ मात्र या को अध्यारोप कियो जाए वह ब्रह्म के ऊपर, ये जा बखत लोकन को मालूम पड़ जाए तो जो अनुराग है वो स्वाभाविक अनुराग विनष्ट होए बिना रहे नहीं, अथवा तो फिर वो स्वाभाविक अनुराग को खेच खेच के जबरदस्ती लानो पड़े, नहीं आवे मन सु क्योंकि दिखे कि ये तो मिथ्या है, फिर भी उपासना तो अभी मेरी जब तक उपासना की दशा है तब तक तो मुकू यही को मानना चाहिए, या जातसु जबरदस्ती वा अंतकरण पे करनी पड़े, स्वाभाविक अनुराग की जो एक धारा बहती हो वो धारा बहनी तो बंद हो ही जाए। स्वाभाविक अनुराग धारा तो तभी बह सके कि जब वाकु परम सत्य परात्पर तत्व माने, तब बह सके, वाके बिना कभी भी जो है वो बह नहीं सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो परम सत्यता की भावना के बिना वो परमानुराग की भावना वह ठिकाने कभी भी स्थिर नहीं रह सकेगी, जा ठिकाने मिथ्यात्व भान आयो वहाँ कुछ न कुछ भीतर हेयता की बुद्धि आई जाएगी, ये व्यावहारिक दशा तक या को संबंध है ही, जबरदस्ती मानना पड़ेगो, आखिर तो परमार्थ में तो वही निर्गुण निराकार तत्व मिलेगो, ये तो अंतरात्मा में जरूर एक भावना उठेगी, और वही भावना जो है वो भक्ति की स्नेह की प्रेम की सबकी जो है वो महाबाधक भावना हो तो वो भावना है। लक्ष्मण, अतएव अनर्थ करने वाले आज ही पैदा भये हो ये बात नहीं है, अनर्थ करने वाले बड़े वर्षन सु पैदा है, और यही सु महाप्रभु जी को कहना पड़े कि विप्रेशु भूत्वा माने अनिषिद्धम वेशम आश्रित्य ब्राह्मणे ब्राह्मणन में पैदा हो के और फिर वे मोहन करें, यथा कथंचित विप्रेशु भूत्वा, वही कह रहे हैं कि बुद्धावतारे तू अधुना हरौ, अब मालिक ने ये काम कियो, निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम, और वो सबको जितने भी हैं आसुरन को व्यामोह करने के लिए जब बुद्ध ने अवतार लियो तब ये देवताएं भी कमर कस के उतर पड़े, उन्हें कि चलो अपन भी जो है वो चलो अब अपनो मालिक ये काम कर रहे हो तो अपन को भी जो है वो करना पड़ेगा, यासु वे वा बखत सु चले आ रहे, नहीं तो भला गीता के ऊपर। संस्कृत एक तो ऐसी भाषा है भाई, हम तुमको कहें संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि वा में अर्थन को मार मचोड़ के जो है वो करना हो तो कहीं से भी कोई चीज अर्थ निकल सके। अब तुमको कोई को कल्पना भी नहीं आवेगी ऐसी बात हम तुमको एक सुना रहे हैं, हम पहले एक वक्त सुना चुके हैं 5-10 बरस पहले, अब जैसे 5 बरस हो तो 10 बरस हो कब कह चुके हैं, पर कही हमने यही है और ऐसे ही एक व्यापक प्रवचन के भीतर कही गई बात है। वो चीज क्या हमने कही थी, एक बात हम तुमको पहले सुना चुके हैं वही को पुनः कह रहे हैं, पर अब तुमको कोई कुस्मरण नहीं होगी। कालिदास ने एक रघुवंश ग्रंथ बनाए हुए, प्रायः जाने भी इंटर पढ़े होएगो वाकू तो मालूम जरूर होएगी, क्योंकि रघुवंश कुमार संभव कुछ मेघदूत ये जो है वो जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेके पढ़ते हो विवाह के साथ स्कूल कॉलेज में भी, ये ग्रंथन के कुछ पोर्शन आवे हैं कादंबरी के, मैट्रिक सुई शुरू हो जाए हैं, मैट्रिक और या में जो है वो आ जाए, फिर बीए में तो जाके फिर और चीज़ें शुरू हो हैं, परंतु वाके पहले जो है वो ये ग्रंथ आ जाए मैट्रिक या तो प्रीवियस में ऐसे आ जाए ऐसे में। वो रघुवंश ग्रंथ खुल्लो जो है वो वाठिकाने खुले शब्द हैं कि रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाग विभवो पिसन तद्गुण कर्णम आगत्य चापलाय प्रणोदिता। मैंने रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, साफ वो कह रहे हो कि रघुवंश के चरित्र को मैं कहने बैठे हूँ। रघुणाम अन्वयम माने रघुवंशीय जो राजा हैं उन राजान के चरित्र को मैं कहने बैठे हूँ। भाई आगे कथा भी कौन की आवे तो दिलीप राजा की कथा आवे, दिलीप कैसे गाय को रक्षा करने गयो, यहाँ से जो है वो कथा शुरू हो। फिर रघु को जन्म कैसे भयो, फिर रघु जो है वो रघु के बाद रघु के यहाँ जो है वो अज को जन्म कैसे भयो, और अज के बाद जो है वो दशरथ को जन्म कैसे भयो, यो जो है वो खट्वांगा दीर्घ बाहु स्यात् रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। यो भागवत में जो परंपरा कही है लगभग वासु कुछ थोड़ो अंतर आतो हो तो भले, नहीं तो लगभग वासु मिलती जुलती परंपरा सु रघुवंश के चरित्र को कहने वालों। कालिदास को संस्कृत भाषा के भीतर एक सुप्रसिद्ध काव्य है जो हमारे यहाँ को संस्कृत प्रथमा परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को भी खबर है कि रघुवंश एक काव्य। काशी के भीतर एक दुख भंजन चक्रवर्ती नाम सु एक कवि चक्रवर्ती नाम सु बड़े भारी विद्वान पुरुष एक हो गए। उनके जो है वो पुत्र हते हमारे युवावस्था के समय में, अब तो वे भी नहीं रहे पर हमारी युवावस्था के समय तक उनको बराबर स्थिति हती, महामहोपाध्याय देवी प्रसाद कवि चक्रवर्ती। तो ये जो उनके पिता हते दुख भंजन कवि चक्रवर्ती बड़े जबरदस्त उपासना हती उनको। एक दिन दो बाटली लेके जो है वो उपासना कर रहे थे, शिव कुमार शास्त्री, तात्या शास्त्री, गंगाधर शास्त्री और जो है वो सब जने उनके घर पे पहुंच गए। उनमें शक्ति भी इतनी हती कि उन दोनों बाटली को गुलाब जल बना के उनने सबके ऊपर छिड़क दी। ध्यान में आई कि नहीं, इतनी शक्ति भी हती। ध्यान में आई, मैंने वो गुलाब जल बना के छिड़क दी। उन्हें आई क्यों जी, वही वक़्त जाके कमाल छोके जा वक़्त, तो कौन तो के फलाने तो के आइए आइए करके वो उपासना तो छोड़ दी और उनने वहां को गुलाब जल बना लियो और वे आए उन सबन के ऊपर गुलाब जल बना के छिड़क दिया। हती जो चीज तुम बाटली को मतलब समझ जाओ। ध्यान में आई कि नहीं, पर उनने ऐसे शक्तिमान भी हते, कुछ शक्ति भी हती उनने। एक दिन वहां ब्राह्मण को बैठे बैठे अनर्थ लिखने की इच्छा भई। ध्यान में आई कि नहीं, विद्वान तो हतो ब्राह्मण, अनर्थ लिखने की इच्छा भई। पकड़े रघुवंश को, वह रघुवंश की आखी टीका यो लिखी के एक घोरतर एक डाकू है तो वाकी जीवन ही है। ये रघुवंश की टीका भई हो, एक जबरदस्त घोर एक कोई डाकू है तो वाकी जीवन ही है, ये रघुवंश वघुवंश कुछ नहीं। आखे सब श्लोकन में सु उनने यही ढंग सु अर्थ निकाल के बतायो कि एक भयंकर कोई जो है वो डाकू है तो वह डाकू ने कैसे लूट मचाई याकी सब जीवन ही। और उनने अक्षर अक्षर काशी के अच्छे अच्छे वैयाकरण को भी वहां बखत यो मानना पड़ो कि हाँ ऐसा भी, इसको जो यदि यो करो तो यो तोड़ो मरोड़ो तो हो सकता है ऐसा भी है। मतलब जो है वो संस्कृत भाषा एक ऐसी है कि जो है वो वाको अर्थ जैसे चाहो ऐसे बने, परंतु कम से कम वाको नाम तो देखना चाहिए कि भाई रघुवंश नाम है बाबा, यहाँ डाकू वंश नाम नहीं है, रघुवंश नाम है। ध्यान में आई ने, लुंठाक वंश नहीं है, लुंठाक माने डाकू को कहें, समझे कि नहीं, जो लुंठाक वंश नहीं है यहाँ जो है वो रघुवंश नाम है, इतनो तो विचारना चाहिए। पर इतनो भी विचार करे बिना केवल वह टीका को लेके कोई रघुवंश बांचे है तो वाकू कभी मालूम नहीं पड़े कि ये रघु को चरित्र है कि या में जो है वो अज को चरित्र है कि या में दशरथ को चरित्र है कि या में राम को चरित्र है। रघुवंश में तो सब है, दशम सर्ग सु जो है वो संपूर्ण राम को चरित्र है, अतएव पंचदश में तो जो है वो श्री सीता वनवासादि को वर्णन है। तो जहाँ साक्षात रामचरित्र है, जहाँ दशरथ अजादी चरित्र है, रघुवंशी उन परम पुण्य श्लोक राजान को, वामेसु वाक दुख भंजन कवि चक्रवर्ती ने एक दिन अनर्थ लिखने की जा दिन इच्छा भई, वह दिन उन्हीं श्लोकन को अर्थ करके यो बताया हुआ ने कि जो है वो एक घोर डाकू की आखी जीवनी है, लाइफ है, या कुछ जो पढ़नो हो तो आखी वो लाइफ या के भीतर सु मिले। कहने को मतलब ये कि या ढंग सु संस्कृत में अनर्थ करने के लिए तोड़ मरोड़ के अवकाश भी बहुत मिल जाए जगत में, नहीं मिलते हो ये बात नहीं है, बहुत ठिकाने ऐसे अवकाश, ऐसो जो अवकाश नहीं मिलतो तो तुम विचार करो कि भगवत गीता जो खुले रूप से जो है वो श्री कृष्ण परतत्व तो प्रतिपादन करने वालों ग्रंथ है, जाकू कोई भी यो नहीं कह सके कि ये श्री कृष्ण को परतत्व नहीं कहते हो, वही ग्रंथ के ऊपर अद्वैती ने 10-10 व्याख्याएं लिखी है और मन में आवे ऐसे अनर्थ किए हैं मायावादी ने, कोई कम अनर्थ किए हो ये बात नहीं है। खैर मायावादी को तो कछु भी कहने को वो निराकार के कारण अवकाश मिले, पर एब्सोल्यूट साकार में दो तत्व लेके जो विष्णु तत्व कृष्ण तत्व प्रतिपादक ग्रंथ है, वाकू शिव तत्व प्रतिपादक ग्रंथ करने को जो है वो प्रयास अभिनव गुप्त ने जो है वो कियो। अभिनव गुप्त आज सु 700 वर्ष पहले या 800 वर्ष पहले या तो यासु भी कुछ ऊपर समय होएगो, 800-900 वर्ष या 1000 वर्ष पहले, आज सु कम 1000 वर्ष पहले अभिनव गुप्त जो है वो कश्मीर को एक जबरदस्त शैव विद्वान है, जबरदस्त शैव तदाहु अभिनव गुप्त पादास्तु सब सब शैव ग्रंथन में वाको नाम खुल्लो मिले है। खास करके ये जो है वो आज तुम ये कई नाम बाँचते होंगे, कौल कौल यो नाम आवे है, हाँ तो वो कौल नाम जो आवे है ना वो कौल क्या है, वो कौल मत है, कौल एक शाक्तन को शैवन को मत है, वह कौल दर्शन को नाम है कुल दर्शन, वह को नाम ही है कुल, वो कुल दर्शन को मानने वाले जो शाक्त और शैव हैं उनको नाम है कौल। ये कौल को जो है वो अपभ्रंश होके आज अमुक कौल महेश कौल फलानो कौल अमुक कौल ये जो कौल नाम भय हैं, ये नेहरू वंश कौल वंश ये सब कश्मीरी वंश है ब्राह्मणन के, तो ये जो कौल है वो कौल माने क्या, वो कुल दर्शन को मानने वालों। शैवन के वहां तीन संप्रदाय थे आज सु 1000 वर्ष पहले या तो 1500 वर्ष पहले कश्मीर में, शैवन के तीन संप्रदाय बड़े प्रसिद्ध थे, एक कुल दर्शन, एक क्रम दर्शन और एक प्रत्यभिज्ञा दर्शन। इन तीनों संप्रदाय में अभिनव गुप्त को बहुत बड़ो स्थान है, साधारण स्थान नहीं है। वह अभिनव गुप्त की छापी भई व्याख्या निर्णय सागर में तुमको मिले है, गीता में, गीता के जो निर्णय सागर में जो 8 टीका की व्याख्या निर्णय सागर कोलभाट लेन में जो प्रेस है, वह निर्णय सागर प्रेस की जो गीता जो 8 टीका की मिले है वह में अभिनव गुप्त की व्याख्या है, और वह अभिनव गुप्त ने आखी गीता में सु शिव पर तत्व है ये सिद्ध की हो ध्यान में, क्योंकि वो अनर्थ लक्ष्मी ने सदर्थ नहीं, खाली वो शब्दन को इतने व्यामोहक शब्दन को लिखने कि जिन शब्दन को लिखने सु आदमी को मालूम पड़े कि या को अर्थ यही होना चाहिए, इतनी उनकी वो जबान में ताकत है, जैसे एक बैरिस्टर की जबान में ताकत हो कि मन में आवे सच्चे को झूठो झूठे को सच्चो वो करे है कोर्ट में, ऐसे ही जो है वह विद्वत समुदाय में वह जबान की ताकत सु वे लोग कर जाए, पर जा वक्त कोई जबरदस्त परीक्षक पीछे पड़े है तब वो एक एक अक्षरन को जो है वो संभाल के वह ठिकाने बता सके है कि देखो कहाँ गड़बड़ करिए कहाँ गड़बड़। अब जा ठिकाने खुल्लो जो शब्द आवे है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, वह ठिकाने भी जो आदमी खींच तान के निकाल तो हो कि शिव पर तत्व है तो वह को नाम अनर्थ नहीं तो और क्या है।